आशा की किरण, यह है पॉडकास्ट आपका अपना, जहां पर आप और हम मिलकर जीवन को देंगे एक नए सूर्योदय की आशा की किरण। जी हां साथियों, इस कार्यक्रम में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जिंदगी को ले जाएं उम्मीद, आशा, अच्छी बातें, सकारात्मक बातें और ढेर सारे उत्साह की ओर। तो फिर हर रोज़ आशा की किरण में आपसे मुलाकात होती रहेगी। हम नए नए प्रयास, नई नई कोशिशें जीवन को एक उत्थान देने की करते रहेंगे। ज़रूरत है आपके साथ की, तो मिलते रहिए आशा की किरण में, जो लेकर आऊँगी मैं आपकी दोस्त किरण आचार्य। जय श्री कृष्णा साथियों, जैसे कि किसी पौधे को हमेशा सींचते रहने पर वो पुष्पित पल्लवित होता है, ठीक वैसे ही जब आहां कोई काम शुरू किया जाता है तो निरंतर उसके लिए उसके फीडबैक्स, उसके लिए सुझाव और उत्साहवर्धन, प्रोत्साहन के संदेश आते रहें तो वो कार्यक्रम भी फलता फूलता और अधिक बेहतर होता चला जाता है। तो आप से निरंतर मैं कहती रहती हूँ कि आप ज़रूर मुझसे संपर्क बनाए रखें, मैसेजेस भेजें, और आप मुझे मैसेज भी भेज रहे हो उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही ये कोशिश करती हूँ कि इसकी निरंतरता बनी रहे और नए नए प्रयोग मैं इसमें करती रहूँ। तो आपको इन प्रयोगों में से कौन सा प्रयोग अच्छा लगा ये भी आप मुझे बताएं कि इसकी प्रस्तुति इस तरह से ज़्यादा अच्छी लगी है हमें, तो उसको हम फिर आगे उसी तरह से किया करेंगे। तो वास्तव में ये सारी चीज़ें अभी प्रयोग के स्तर पर गुजर रही हैं, तो आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में हमें नए मैसेजेस मिले हैं, आज हम शामिल कर रहे हैं पीपली आचार्यान कांकरोली से हेमलता आचार्य का ये संदेश। हेमलता जी ने पीपली आचार्यान गांव है नाथद्वारा के पास में, 15 किलोमीटर दूर श्री नाथद्वारा की पुण्य भूमि से हमें ये संदेश भेजा है। आइए सुनते हैं वो क्या कहती हैं आशा की किरण के बारे में।
प्रणाम भाभी जी, आशा की किरण के द्वारा जो आपने श्रीमद् भगवद गीता का हमें श्रवण करवाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि गीता जी को पढ़ने से उद्धार हो जाता है, लेकिन जितना पढ़ने से होता है उतना ही सुनने से भी उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। और आपने बहुत ही पुण्य का कार्य किया है और आपने इस महामारी के दौर में इस समय का सही सदुपयोग किया है, सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हेमलता जी आचार्य ने ये मैसेज हमें भेजा गांव से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही इस पॉडकास्ट की खूबसूरती है कि ये दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है। आपका मोबाइल जहां भी है आप इसको सुन सकते हैं, और लॉकडाउन में आपने इसका लाभ उठाया तो हमारा जो प्रयास है वो सार्थक रहा। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको अकेले ही पढ़ूँ, लेकिन ईश्वर जो चाहता है ना वो होता है। देखिए इन दिनों ही मेरे को इससे आपका पता चला, तो मैंने देखा कि इस तरह मैं अकेले ही भगवद गीता के पठन का लाभ न लेके सबके साथ इसको बांट भी सकती हूँ। ये प्रयास आपको पसंद आया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हम फिर से रिपीट कर रहे हैं एक मैसेज, बहुत अच्छा लगा हमें, अहमदनगर महाराष्ट्र से जो आया था श्रीमती मनीषा दायमा का, तो उसको रिपीट करके सुन लेते हैं।
आशा की किरण पॉडकास्ट में किरण जी आचार्य द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक, उनके अर्थ, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का पठन अत्यंत स्पष्ट, सुरीली और सटीक वाणी में मन को बहुत भाता है। लॉकडाउन की इन नकारात्मक परिस्थितियों में आशा की किरण ने हमें ये प्रेरणा दी है कि जिंदगी सच में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है।
तो मनीषा जी की जो ये लाइन है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ये मेरी पंच लाइन है। आकाशवाणी में कार्यक्रम देते समय मैं अंत में ये लाइन ज़रूर बोलती थी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तो आपकी और मेरी पंच लाइन सेम है और बिल्कुल ज़िंदगी खूबसूरत है, इसे देखने का नज़रिया सौंदर्यपूर्ण होना चाहिए, फिर तो जो संकट हैं वो भी आपको अवसर की तरह लगने लगते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मैसेजेस मुझे मिले हैं, अगली बार हम उन मैसेजेस को शामिल करेंगे। सुनते रहिए और हमेशा मेरे साथ बने रहिए, आप मेरा बहुत बड़ा संबल है। धन्यवाद। तो लीजिए अब आरंभ करते हैं श्लोकों का पठन। उसके पहले पीछे मुड़कर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। पूर्व के श्लोकों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट किया कि पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्रों को जैसे हम पहनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पुराने शरीर को त्याग कर आत्मा नए शरीर को धारण करती है। साथ ही उन्होंने प्रतिपादित किया कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा की इसी नित्यता को आगे के श्लोक में और अधिक स्पष्ट करते हैं। तो आज हम द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 24 से पठन आरंभ करते हैं। श्लोक संख्या 24। अच्छेद्योयम् दाह्योयम् क्लेद्यो शोषयः एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर चलोयम् सनातनः। अर्थात यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदय, अक्लेद्य और निःसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। पूर्व श्लोक में यह बात कह दी गई थी कि शस्त्रादि के द्वारा आत्मा नष्ट नहीं किया जा सकता, फिर इस श्लोक में उसे दोबारा अच्छेद्य, अदय, अक्लेद्य और अशोष्य कहने का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने आत्म तत्व का शस्त्रादि द्वारा नाश न हो सकने में कारण का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि आत्मा कटने वाली, जलने वाली और गलने वाली और सूखने वाली वस्तु नहीं है, वह अखंड, अव्यक्त, एकरस और निर्विकार है। इसलिए उसका नाश करने में शस्त्रादि कोई भी समर्थ नहीं है। अच्छेद्यादि शब्दों से आत्मा का नित्यत्व प्रतिपादन करने के लिए उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहने का क्या अभिप्राय है? अच्छेद्यादि शब्दों से जैसा कि अविनाशित्व सिद्ध होता है, वह तो आकाश में भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आकाश अन्य समस्त भूतों का कारण और उन सब में व्याप्त होने से न तो पृथ्वी तत्व से बने हुए शस्त्रों द्वारा काटा जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल से गलाया जा सकता है और न वायु से सुखाया ही जा सकता है। आत्मा का अविनाशित्व उससे अत्यंत विलक्षण है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहा गया है। अभिप्राय यह है कि आकाश नित्य नहीं है, क्योंकि महाप्रलय में उसका नाश हो जाता है और आत्मा का कभी नाश नहीं, इसीलिए वह नित्य है। आकाश सर्वव्यापी नहीं है, केवल अपने कार्य मात्र में व्याप्त है और आत्मा सर्वव्यापी है। आकाश सनातन सदा से रहने वाला आदि नहीं है और आत्मा सनातन अनादि है। इस प्रकार उपर्युक्त शब्दों द्वारा आकाश से आत्मा की अत्यंत विलक्षणता दिखलाई गई है। आत्मा को स्थान और अचल कहने का क्या भाव है? इससे आत्मा में चलना और हिलना दोनों क्रियाओं का अभाव दिखलाया है। एक ही स्थान में स्थित रहते हुए कांपते रहना हिलना है और एक जगह से दूसरी जगह जाना चलना है। इन दोनों क्रियाओं का ही आत्मा में अभाव है। वह न हिलता है और न चलता ही है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है, कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है।
जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। मातु जसोदा ब्रज नारी के,
मातु जसोदा ब्रज नारी के,
मातु जसोदा ब्रज नारी के, माखन चोर गई ये दीन दयाल।
अव्यक्त्योयम् चिन्तयोयम् विकार्योयम् मुच्यते तस्मादेवम् विदित्वैनम् नानुशोचितुम् हर्षि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा को अव्यक्त और अचिंत्य कहने का क्या भाव है? आत्मा किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं और वह मन का भी विषय नहीं है, इसलिए उसे अचिंत्य कहा गया है। आत्मा को अविकारी कहने का क्या अभिप्राय है? आत्मा को अविकारी कहकर अव्यक्त प्रकृति से उसकी विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि समस्त इंद्रियां और अंतःकरण प्रकृति के कार्य हैं, वे अपनी कारण रूपरा प्रकृति को विषय नहीं कर सकते, इसलिए प्रकृति भी अव्यक्त और अचिंत्य है, किंतु वह निर्विकार नहीं है, उसमें विकार होता है और आत्मा में कभी किसी भी अवस्था में विकार नहीं होता, अतएव प्रकृति से आत्मा अत्यंत विलक्षण है। इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखलाया है कि आत्मा को उपयुक्त प्रकार से नित्य सर्वगत अचल सनातन अव्यक्त अचिंत्य और निर्विकार जान लेने के बाद उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता।
खोई गई या तेरी।
प्रयुक्त श्लोकों में भगवान ने आत्मा को अजन्मा और अविनाशी बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। अब दो श्लोकों द्वारा आत्मा को औपचारिक रूप से जन्मने मरने वाला मानने पर भी उसके लिए शोक करना अनुचित है ऐसा सिद्ध करते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापितम महाबाहो नैवम शोचितुमहर्षि। अर्थात किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो तो इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। अथ और च दोनों अव्यय यहाँ किस अर्थ में है और इनके सहित इसको तू सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं है इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? अथ और च दोनों अव्यय यहाँ औपचारिक स्वीकृति के बोधक हैं। इनके सहित उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आत्मा जन्मने और मरने वाला नहीं है यही बात यथार्थ है तो भी यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के संयोग में प्रवाह रूप से सदा जन्मने वाला मानते हो तथा सदा मरने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के वियोग में प्रवाह रूप से सदा मरने वाला मानते हो तो इस मान्यता के अनुसार भी तुम्हें उसके लिए इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए।
जमुना तट ना नंदन वट ना गोपी ग्वाल कोई दिखे सुमुलताना तेरी छटाना पाख पखेरु कोई नीके अब साँझ भई घन श्याम में व्याकुल गैया तेरी।
जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमहर्षि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है।
मन का ताप शाप भटकन का तुम ही हरो हर रास रचैया।
मन का ताप शाप भटकन का तुम ही हरो हर रास रचैया।
अब रूप में हारूं बात प्रभु जी मैं गैया
ही का यहाँ क्या अभिप्राय है? ही हेतु के अर्थ में है। पूर्व श्लोक में जिस मान्यता के अनुसार भगवान ने शोक करना अनुचित बतलाया है उसी मान्यता के अनुसार युक्ति पूर्वक उस बात को इस श्लोक में सिद्ध करते हैं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है यह बात तो ठीक है क्योंकि जन्मा हुआ सदा नहीं रहता इस बात को सभी जानते हैं। परंतु यह बात कैसे कही कि जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है क्योंकि जो मुक्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता यह प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान वास्तविक सिद्धांत की बात नहीं कह रहे हैं। भगवान का यह कथन तो उन अज्ञानियों की दृष्टि से है जो आत्मा का जन्मना मरना नित्य मानते हैं। उनके मतानुसार जो मरण धर्मा है उसका जन्म होना निश्चित ही है, क्योंकि उस मान्यता में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जिस वास्तविक सिद्धांत में मुक्ति मानी गई है उसमें आत्मा को जन्मने मरने वाला भी नहीं माना गया है। जन्मना मरना सब अज्ञान जनित ही है। तस्मात पद का क्या अभिप्राय है तथा अपरिहार्य अर्थे का क्या भाव है और उसके लिए शोक करना अनुचित क्यों है? तस्मात पद हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके अपरिहार्य अर्थे से यह दिखलाया गया है कि उपर्युक्त मान्यता के अनुसार आत्मा का जन्म और मृत्यु निश्चित होने के कारण वह बात अनिवार्य है, इसमें उलट फेर होना असंभव है। ऐसी स्थिति में निरुपाय बात के लिए शोक करना नहीं बनता, अतएव इस दृष्टि से भी तुम्हारा शोक करना सर्वथा अनुचित है। पूर्व श्लोकों द्वारा जो आत्मा को नित्य अजन्मा अविनाशी मानते हैं और जो सदा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन दोनों के मत से ही आत्मा के लिए शोक करना नहीं बनता, यह बात सिद्ध की गई। अब अगले श्लोक में यह सिद्ध करते हैं कि प्राणियों के शरीरों को उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता। अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधाना नैव तत्र का परिवेदना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? भूतानि पद यहाँ किसका वाचक है और उनके साथ अव्यक्तादीनी और अव्यक्त निधानिनी और व्यक्त मध्यानी इन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? भूतानि पद यहाँ प्राणी मात्र का वाचक है, उनके साथ अव्यक्तादीनी विशेषण जोड़कर यह भाव दिखलाया है कि आदि में अर्थात जन्म से पहले इसका वर्तमान स्थूल शरीरों से संबंध नहीं था। अव्यक्त निधनानी से यह भाव दिखलाया है कि अंत में अर्थात मरने के बाद भी स्थूल शरीरों से इसका संबंध नहीं रहेगा, और व्यक्त मध्यानि से यह भाव दिखलाया है कि केवल जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बीच की अवस्था में ही ये व्यक्त है, अर्थात इसका शरीरों के साथ संबंध है। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? इस वाक्य का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि जैसे स्वप्न की सृष्टि स्वप्न काल से पहले या पीछे नहीं है, केवल स्वप्न काल में ही मनुष्य का उसके साथ संबंध सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिन शरीर के साथ केवल बीज की अवस्था में ही संबंध होता है, नित्य संबंध नहीं है, उनके लिए क्या शोक करना? महाभारत स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने भी यही बात इस प्रकार कही है। अदर्शनादा पतिताहा पुनश्चा दर्शनम गताहा नैते तव न तेषां त्वं तत्र का परिवेदना। अर्थात जिनको तुम अपने मान रहे हो ये सब अदर्शन से आए हुए थे, यानी कि जन्म से पहले अप्रकट थे और पुनः अदर्शन को प्राप्त हो गए, अतः वास्तव में न ये तुम्हारे हैं और न तुम इनके हो, फिर इस विषय में शोक कैसा।
साजे कृष्ण कन्हैया मन का ताप शाप भटकन का तुम ही हरो हर रास रचैया
तो साथियों 23 से 25 तक के जो श्लोक हैं उसमें श्री कृष्ण आतत्व को अच्छेद्य, अध्यय, अक्लेद्य और अशोष्य तथा नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार बतलाकर शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। तो वह 27वें श्लोक में आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी उसके लिए शरीरों की जो अनित्यता है उसके कारण शोक करना अनुचित बतलाते हैं। तो ये आज के जो हमने श्लोक पढ़े उनका ये अर्थ निकल करके सामने आता है। आगे के श्लोक आगे पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि हमने एक नया कार्यक्रम आरंभ किया है जिसका नाम है कर्मयोगी कोरोना योद्धा। तो उसकी पहली प्रस्तुति हमने दी थी रविवार को, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत सारे लोगों ने उसको सुना और बहुत अप्रिशिएट किया। आगे भी इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे, समय समय पर प्रसारित करते रहेंगे। आप मुझे ज़रूर इस तरह से बताइए कोई इस तरह के रियल लाइफ हीरोज़ हो जिन्होंने अच्छा कार्य किया हो तो उनके नाम मुझे बताइए ताकि हम उनको हमारे कर्मयोगी कोरोना योद्धा में शामिल कर सकें। तो आपके सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरिनाम यही हरिधाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है।
आशा की किरण, यह है पॉडकास्ट आपका अपना, जहां पर आप और हम मिलकर जीवन को देंगे एक नए सूर्योदय की आशा की किरण। जी हां साथियों, इस कार्यक्रम में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जिंदगी को ले जाएं उम्मीद, आशा, अच्छी बातें, सकारात्मक बातें और ढेर सारे उत्साह की ओर। तो फिर हर रोज आशा की किरण में आपसे मुलाकात होती रहेगी। हम नए नए प्रयास, नई नई कोशिशें जीवन को एक उत्थान देने की करते रहेंगे। ज़रूरत है आपके साथ की, तो मिलते रहिए आशा की किरण में, जो लेकर आऊँगी मैं आपकी दोस्त किरण आचार्य।